शिव शक्ति तू शिव प्रिया तू शिव चेतना तू शिव अर्धांग तू पीड़ित और सी सकते मन पर अपनी करुणा मई वर्षा दे जन्मों से भक्त ढूंढ रहे हैं अब उनमें नव चेतना भर दे शिव शक्ति तू शिव प्रिया तू शिव चेतना तू शिव अर्धांग तू हे ब्रह्मचारिणी तपस्विनी हे जगत माता शिव शक्ति हे ममतामयी सरस्वती हे करुणामयी भगवती मूर्छित मन के सुखे वन में अपनी करुणा सरिता बहा दे जन्मों से भक्त ढूंढ रहे हैं अब उनमें नव चेतना भर दे शिव शक्ति तू शिव प्रिया तू शिव चेतना तू शिव अर्धा से भक्त ढूंढ रहे हैं अब उनमें नव चेतना भर
शिव शक्ति शिव प्रिया तू
शिव चेतना तू शिव अर्धांग तू हे ज्ञान परी हे पार्वती हे देव माता हे वैष्णवी हे भद्रकाली हे रात्रि हे अग्नि ज्वाला हे रौद्रमुखी व्याकुल नैनों की सुखी धरती पर खुशी की शहनाई बजा दे जन्मों से भक्त ढूंढ रहे हैं अब उनमें नव चेतना भर
शिव शक्ति तू शिव प्रिया तू
शिव चेतना तू शिव अर्धा
شند. एक युवक एक राजा के पास आता है और कहता है मैं कोई भी कार्य कर सकता हूं मेरी योग्यता मैं सिद्ध कर बतलाऊंगा। राजा उसके आत्मविश्वास से प्रभावित होता है और उसे अपने घोड़साल जो घोड़ों का तबेला है वहां पर नौकरी दे देता है और कुछ दिनों बाद राजा उसे बुलाता है और पूछता है सभी घोड़ों में जो सर्वश्रेष्ठ घोड़ा है सबसे उच्च कोटि का उच्च नस्ल का उसके विषय में तुम्हारे क्या विचार है। वो युवक कहता है वो घोड़ा नकली है राजा का वो अत्यंत प्रिय घोड़ा होता है। राजा को क्रोध आता है और राजा उस व्यक्ति को बुलाते हैं जिससे वो घोड़ा खरीदा था, घोड़े का मालिक। और वो मालिक कहता है, ये जो घोड़ा है तो उच्च कोटि का, पर परंतु बचपन में ही उसकी माँ मर गई थी, उसको गाय के दूध हमने दिया, पिलाया और बड़ा किया। तो वास्तव में देखा जाए तो ये घोड़ा उच्च कोटि का नहीं है। राजा को आश्चर्य होता है और उस युवक से कहता है कि तुझे कैसे पता चला। वो युवक कहता है, जब ये घोड़ा चारा खाता है तो चारा खाते समय अपना मुंह नीचे ही रखता है, जबकि जो उच्च कोटि के घोड़े होते हैं वो चारा खाते समय मुंह ऊपर रखते हैं। राजा अत्यंत प्रसन्न होता है, उसे भेड़ बकरियां धान्य सौगात दी जाती है, उस युवक को थोड़ी सी पदोन्नति, और इस बार उसे रानी के महल में रखा जाता है सेवार्थ। कुछ दिनों बाद राजा बुलाता है और पूछता है, तुम्हारा रानी के विषय में क्या विचार है? वो कहता है, ये रानी नकली रानी है, इसकी रगों में शाही खून नहीं दौड़ रहा है। राजा अपनी तलवार निकाल लेता है क्रोधित, परंतु इससे पहले कि वो कुछ करे, विवेक जागता है और राजा सीधा अपने सास ससुर के पास जाता है। रानी की माँ कहती है, आपकी शादी हमारी बेटी से तय हो गई थी, परंतु 6 मास के बाद शादी थी, परंतु उसी समय हमारी बेटी की मृत्यु हो गई, इसलिए हमने इस कन्या को ले लिया और ये बताया कि ये हमारी बेटी है, वास्तव में वो राज परिवार की कन्या नहीं है। राजा को दुख भी होता है। राजा वापस आते हैं और उस युवक से पूछते, तुम्हें कैसे पता चला? वो कहता है, जो उच्च कुल के लोग होते हैं और ऊंचे पदों पर होते हैं वो अपने छोटों से नम्रता से बात करते हैं, परंतु ये रानी तो हमेशा छोटों पर हमेशा चिल्लाती रहती है, झल्लाती रहती है, इसलिए ये उच्च कुल की नहीं हो सकती। राजा बहुत प्रसन्न होता है उसकी बुद्धिमानी देखकर और उसे भेड़ बकरियां भैंस गाय इनाम में देता है और उसे पदोन्नति के तौर पर अपने महल में रख लेता है। कुछ दिनों बाद राजा पूछता है, तुम्हारा मेरे विषय में क्या विचार है? वो युवक कहता है, मुझे अभयदान अगर मिलेगा तो ही उत्तर दूंगा, नहीं तो नहीं। राजा कहता है, दिया, अब बोलो। वो कहता है, आप डुप्लीकेट हो नकली। राजा अत्यंत क्रोधित हो जाता है। वो कहता है, आपके रगों में राजा का राजाई के कोई चिन्ह नहीं है आपके व्यवहार। राजा सीधा अपनी माँ के पास जाता है, पूछता है, मैं कौन हूँ? राजा की माँ कहती है, बहुत समय तक मुझे कोई पुत्र नहीं हुआ, आखिरकार एक चरवाहा था, उसका बेटा था, उसको हमने एडॉप्ट किया, वही तुम हो। राजा को दुख भी होता है, क्रोध भी आता है। वापस आता है और उस युवक से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? वो कहता है, एक राजा जो होता है वो शाही होता है। जब जब आपने मुझे पुरस्कार दिया, भेड़ बकरियां पुरस्कार में दिए, राजा पुरस्कार में हीरे जवाहरात देता है, तुमने मुझे छोटी निम्न वस्तुएं अन्न का पुरस्कार दिया है। एक राजा तो उदार चित्त होता है, ऐसे आप में कोई भी लक्षण नहीं। चाहे व्यक्ति कितना भी छिपाए, संस्कार कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाते हैं। अपने ही संस्कारों को जानना, अपने ही भीतर के स्वभाव को समझना, यही इस भट्टी का लक्ष्य है कि मैं हूं क्या, क्या भीतर है, उसे ही जानना है। जानना केवल मैं कौन हूं को है, बाकी सब कुछ गूगल पर अवेलेबल है। खोज केवल एक ही व्यक्ति की करनी है, स्वयं की। स्वयं मैं कौन हूं, और इसका उत्तर इतना आसान नहीं है। मैं आत्मा हूं, ये उत्तर तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं कौन हूं एक खोज है, एक यात्रा है, एक समझ है, एक अंडरस्टैंडिंग है। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, क्या मैं वही हूं जो सबके सामने हूं। मैन इज पॉलीसाइकिक कहा गया है साइकोलॉजी में। मनुष्य बहुचित्तवान, घर में वो कुछ और है, दोस्तों के सामने वो कुछ और है, हर एक के सामने वो अलग अलग है। खंड खंड बटा है, इज फ्रैगमेंटेड, एब्सोल्युटली श्रिजोफ्रेनिक, स्प्लिट। उस खंड खंड में बटा हुआ मैं जो वास्तविक हूं, वो कौन है, इसी की खोज है। और इस खोज के लिए अत्यंत मौन और अत्यंत एकांत की आवश्यकता है, क्योंकि भीड़ में हम स्वयं को नहीं ढूंढ पाते और स्वयं खो जाते हैं। इसलिए हर भट्टी का लक्ष्य स्वयं की खोज है, और साधन है मौन। चाहे ये भट्टी या आने वाली जो भी भट्टी आप करो, उसमें अत्यंत मौन, जितनी हो सके बातचीत कम, और यदि बोलना ही हो तो केवल साधना संबंधित वार्तालाप, पुरुषार्थ संबंधित। यदि यहां आकर भी सुबह से लेकर रात तक केवल सुन रहे हैं और बीच बीच में केवल बातें चल रही है, तो अनुभव नहीं होगा। यहां आए हैं कुछ पाने के लिए, कुछ ले जाने के लिए, और जो ले जाना है वो दिखाई नहीं देगा, वो तो अदृश्य है। परमात्मा के दर्शन नहीं होते, परमात्मा की अनुभूति होती है। दर्द हो रहा है, कहीं दिखता है क्या? उसकी अनुभूति होती है। प्रेम दिखता है क्या? अनुभूति होती है। जितना हो सके स्वयं में लौट जाना है, परिधि से केंद्र की ओर, सर्कमफरेंस से पॉइंट सेंटर की ओर। यह भट्टी सेंट्रलाइजेशन की भट्टी है। स्वयं के ही केंद्र पर वापस आ जाना, परिधि पर, पेरिफरी पर, सर्कमफरेंस पर, व्यक्ति, संबंध, ऑफिस, परिवार, संबंध, दुनिया, करियर, पैसा, सारा संसार का चक्र है और जीवन पर्यंत वहीं घूमते रहते हैं, इसलिए अपने भीतर नहीं पहुंच सकते। इसलिए एक तो मौन, दूसरा जितना हो सके अकेले हो जाना है। जब तक यहाँ है अनुभव करो कि मैं अकेला ही हूँ। उस दुनिया से कुछ समय के लिए जैसे कट ऑफ, आज सुबह की साकार मुरली, वरदान, ये दुनिया जैसे डैश है, विदेश। कुछ दिनों के लिए डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। एक नाव उलट गई, अधिकतर यात्री मर गए, एक ही बचा जो किसी टापू पर चला गया, एक वीरान सुनसान सा टापू, वहीं रहने लगा। कोई नहीं था, खोज की कोई तो मिले। बहुत बड़ा टापू था और चारों तरफ समुद्र ही समुद्र, प्रशांत महासागर के बीच वो टापू इंतजार करता रहा, कोई तो आए, कोई तो आए, कोई नहीं आए। एक हफ्ता बीत गया, वहीं रहने लगा, फल खाने लगा, कुटिया बना ली, घूमता रहा, कोई तो मिले, कोई भी नहीं, पक्षी तक नहीं। एक मास बीत गया, 6 मास बीत गए, 5 साल बीत गए, 25 साल बीत गए, कोई भी नहीं आया। अब उसने इंतजार करना भी छोड़ दिया था, आशा ही छोड़ दी थी। पहले सोचता था कि जाऊं, कुछ करूं, पर इतना विशाल समंदर, न ओर न छोर। और अचानक एक दिन एक नाव वहां आई, उसने देखा दूर से नाव आ रही है, उसमें कुछ लोग हैं। वो नाव उस टापू पर आकर रुकी, कुछ लोग बाहर आए। उस व्यक्ति से पूछताछ की, तुम कौन हो, तुम कैसे यहाँ आए? उसने बताया, इतने साल हो गए मैं यहीं पर हूँ अकेला, पर इससे पहले कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ और जानूं, क्या तुम्हारी नाव में, जहाज में कुछ अखबार है? वो न्यूज़पेपर लेता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, और फिर वो न्यूज़पेपर उनको वापस देता है और कहता है, जाओ तुम लोग, मुझे नहीं आना है तुम्हारे साथ। वो कहते हैं कि हम तुम्हें लेने आए हैं, चल चलो हमारे साथ। हमें पता था वो नाव बहुत पहले, विशाल जहाज, डूब गया था, पर कुछ तो लोग बचे होंगे, उन्हीं की खोज करते हम यहाँ पहुँचे। वो कहता है, मुझे उस दुनिया में आना ही नहीं है। वो कहते हैं, क्यों? वो कहता है, इस 25 सालों में जो मौन और जो शांति और जो एकांत का मैंने यहाँ अनुभव किया है, वो दुनिया अब मुझे पागल खाने जैसी लगती है, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे पागल खाने में, यहीं मैंने स्वयं को पाया है, इसी मौन में और इसी एकांत में। मुझे नहीं चाहिए वो दुनिया और उस दुनिया की वो सारी खबरें, वही हिंसा, वही रक्तपात, वही विकार और वही वासनाएं। जाओ यहां से, मैंने जो यहां पाया है वो तुम नहीं समझ सकोगे। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि हम भी कहीं समुद्र पर जाए और किसी नाव में बैठे और फिर वो नाव उलट जाए और बाकी सब मर जाए और हम अकेले बचे और किसी टापू पर हमें मिल जाए और उस टापू पे हम 25 साल तक रहे और 25 साल तक के बाद कोई नाव आए और हम वहाँ की खबरें पढ़े और हमें अनुभव हो कि मुझे उस दुनिया में नहीं जाना है। ये शायद हम में से सबके साथ नहीं होगा, परंतु एक टापू हमारे ही भीतर है और जो हमारे ही चेतना में है और अंतकरण में है, हम वहाँ तो जा ही सकते हैं। ये संसार एक पागलखाना है, अ मेंटल हॉस्पिटल, या लोग पागल है, कोई शरीरों के पीछे पागल है, कोई धन के पीछे, कोई सत्ता के पीछे पागल है, कोई परमात्मा के पीछे भी पागल है। ऐसे संसार में एक निर्जन टापू हमारे ही अंतकरण में है, हमारे ही चेतना में है। बस वहाँ प्रवेश करना है और वहाँ जाते ही हमें स्वयं का साक्षात्कार होगा और यही खोज है। यह भीख मांगना बंद होगा, भीख का कटोरा जो हमने ले रखा है, सुख दे दो, शांति दे दो, प्रेम दे दो, मेरा ध्यान रखो, केयर करो, मेरे तरफ अटेंशन दो, प्रशंसा दे दो, एप्रिसिएशन दे दो, एक्नॉलेजमेंट दे दो, हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी, पैसा दे दो। और जब हम भीतर जाएंगे तो पाएंगे कि हम संपन्न पहले से ही है। शृण्वंत विश्वे अमृतस्य पुत्रा, उपनिषद का ऋषि पहाड़ों पर, चट्टानों पर खड़ा रह के कहता है, हे विश्व की आत्मा सुनो, तुम अमृत की संतान हो। ई आर द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टैलिटी। हम ही वो अजस्त्र, वो अक्षय स्रोत है ऊर्जा का, शक्ति का। हम अब स्वयं को भूल गए हैं, सेल्फ फॉरगेटफुलनेस। इलाज है सेल्फ रिमेम्बरिंग, स्व का स्मरण। धामिनी दिव्यानुतस्तु वेदाहमेदं पुरुषं महंतं, आदित्यवर्णां वर्णं तमसा परस्तात्। तुम उस सूर्य की तरह हो, ऊर्जावान, शक्तिशाली। ये स्वयं का विस्मरण है जिसके वजह से चेतना इतनी दुखी, इतनी पैरालाइज्ड, इतनी कमजोर हो गई है। तो इस भट्टी का लक्ष्य है स्वयं के भीतर जाना और स्वयं को समझना कि मैं ऊर्जा हूँ, शक्ति हूँ, और मुझसे निरंतर किरणें फैल रही है और मुझसे निरंतर शक्ति का स्पंदन हो रहा है, कंपन। और यही सबसे बड़ी सेवा भी है। केवल बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सूर्य केवल खड़ा है आकाश में, किरणें फैल रही है, चंद्रमा केवल है, चांदनी सब तरफ फैल रही है, अग्नि केवल है, उष्मा चारों तरफ फैल रही है, फूल केवल है, उसकी खुशबू चारों ओर फैल रही है। जब हम अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, अपने आप किरणें फैलती है जो हमें भी शुद्ध करती है और सारे वातावरण को भी। पुलिस के पास एक कुत्ता होता है जिसको कहते हैं स्निफर डॉग। वो सूंघता है और पकड़ लेता है चोर को। एक चोर जो निकृष्ट कर्म करता है वो भी अपने वाइब्रेशंस छोड़कर जाता है, और हम जो इतनी महान आत्माएं, इतनी दिव्य आत्माएं हैं, परमात्मा पालना में पली हुई आत्माएं हैं, ऐसी आत्माएं जिन्होंने भगवान को जाना है, पहचाना है। अवजानन्ति माम मुड़ा, गीता में लिखा है, हे अर्जुन, वो मेरा उपहास करते, वो मुझे जानते ही नहीं। वो मूर्ख है जो मुझे नहीं पहचानते, मानुषी तमाश्रिता, जब मैं साधारण रूप में आता हूँ, हम वो आत्माएं हैं, तो हम जहाँ खड़े हैं वहाँ कैसी प्रकंपन, कैसे वाइब्रेशंस फैलेंगे, कैसी ऊर्जा इसी हॉल में, एक दिव्य ऊर्जा इस समय बह रही है। सभी एक सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगे और इस हॉल की ऊर्जा का अनुभव करेंगे। एक अव्यक्त धारा बह रही है यहाँ, एक दिव्य ऊर्जा। मुझसे चारों तरफ ये ऊर्जा फैल रही है और यहाँ की ऊर्जा मुझ में आ रही है। जब चेतना अत्यंत शुद्ध होती है तो ऊर्जा को बहुत जल्दी कैच करती है, समझ जाता है ये स्थान कैसा है, यहाँ की ऊर्जा क्या है। रामकृष्ण परमहंस के पास यदि कोई मिलने आता था गृहस्थी, वो जहाँ बैठता था वो जाने के बाद एक फावड़ा लेकर उस भूमि को खोद के फेंक देते थे, क्योंकि ये व्यक्ति की ऊर्जा बहुत दूषित थी। जैसे जैसे आत्मा शुद्ध होती है, अत्यंत संवेदनशीलता बढ़ती होने लगती है, हमें स्थान की ऊर्जा का पता चलता है, हमें जो नए व्यक्ति आ रहे हैं वो कौन है, क्या मंशा है, उनका पता चलने लगता है। यहाँ तक कि जो घटनाएं घटने वाली है उसका भी पता चलने लगता है। अव्यक्त महावाक्य है, बाबा से दीदी से मुलाकात, इन्वर्टेड कॉमा, एक समय आएगा जब तुम्हारे संकल्प और ड्रामा पैरेलल चलेगा, तुम्हें जैसे पहले ही पता होगा अब ये होने वाला है। आभास, इस सृष्टि में जो जो घटित हो रहा है, हम एक यूनिवर्सल माइंड से जुड़ेंगे। इस सृष्टि के सारे रहस्य हमें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। ये घटनाएं क्यों हो रही है, हमारे जीवन में ये क्यों घट रहा है, जो घटा वो क्यों, यही तो प्रश्न होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये जो कुछ हुआ पिछले 10 साल में ऐसा क्यों हुआ। हम जूझते रहते, प्रश्न पूछते रहते, उत्तर कभी मिलता नहीं और ही कन्फ्यूजन बढ़ता है। जापान में लोगों ने संशोधन किया, जो पक्षी है भूकंप होने से पहले एक दिन पहले ही उन्हें पता चल जाता है, रात को ही सारे पक्षी उड़ जाते हैं। कैसे उनको पता, और मौसम विभाग 2 घंटे पहले भी अभी पूर्ण रूप से निश्चित नहीं है, हो सकता है, ये मनुष्य की गणना है। इसलिए आज के सत्र में हम ऐसी 7 बातें देखेंगे जो हमें अपने शक्ति रूप में स्थित करेगी और हमसे 2400 घंटे वो प्रकंपन, वो ऊर्जा, वो स्पंदन, वो वाइब्रेशन, वो रश्मियाँ, वो किरणें फैलती रहेगी। सेवा केवल वो नहीं है जब हम बैठे हैं और माइक सामने है, या हम जब बोल रहे हैं, हम सो रहे हैं तभी भी सेवा है, हम चल रहे हैं वो भी सेवा है, हम खा रहे हैं, हम उठ रहे हैं, खाओ सो सो सेवा, उठू बैठू सो परिक्रमा। कबीर ने कहा है, मैं खाता हूं और सोता हूं, यही सेवा है, और मैं उठता हूं और मैं बैठता हूं, हे प्रभु ये तेरी परिक्रमा है। हर कर्म, चाहे वो छोटा सा क्यों ना हो, वो इतनी दिव्यता से, इतने भाव से और इतने प्रेम से और इतनी संवेदनशीलता से चेतना करे कि हर कर्म योग होता है। वास्तव में राजयोग तो बाबा के कमरे के बाहर से चालू होता है, वहां ना कोई ट्रांसलाइट है ना कोई लाइट, ना कोई गीत, ना कोई सॉफ्ट म्यूजिक, ना कोई हॉल, ना कोई कमेंट्री, ना कोई क्लास, कुछ नहीं। ना कोई मुरली, यू बिकम द मुरली, हम स्वयं ही मुरली बन जाते हैं, हम स्वयं ही राजयोग बन जाते हैं। तो क्या हम करें जो अपनी स्थिति को ऊपर 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 ले जाए। नीचे लकीर है, उस लकीर को कैसे छोटा करें बिना उसको स्पर्श किए। और सबको उत्तर पता है, ऊपर एक बड़ी लकीर। जीवन की परिस्थितियां, उन्हें कुछ नहीं करना है। जीवन में व्यक्ति है जो विघ्न डालते हैं, समस्याएं हैं उन्हें है, फिर सब कुछ छोटा दिखने लगता है। अभी बहुत बड़ा दिख रहा है इस तदात्म्य के कारण, आइडेंटिफिकेशन के कारण, क्योंकि हम चिपके हुए हैं। जैसे ही हम दूर होते हैं और ऊपर उठते हैं, इस संसार की हर वस्तु छोटी छोटी हो जाती है, फिर वो हमें प्रभावित नहीं करती। तो सबसे पहली चीज है सोल कॉन्शियसनेस। आज सुबह की साकार मुरली, केवल मैं ही देही अभिमानी हूं, बाबा ने कहा है। केवल मैं, इसी का अभ्यास करना है। ये शरीर और मैं अलग, जैसे सूखा नारियल, वो खोल और गिरी अलग, चलते फिरते उठते बैठते, इन शरीरों को देखते हुए, इन शरीरों से भागना नहीं है, ना ही शरीर के प्रति घृणा उत्पन्न करनी है। यह शरीर बहुत श्रेष्ठ साधन है, परंतु यह हम पर है, हम इसका क्या करते हैं। शरीर को अपनी पहचान समझना सबसे बड़ी भूल है। और जिसने आत्मा का स्वाद नहीं चखा, वही शरीर में फंसते हैं, उन्हीं को शरीर अच्छा लगता है। शरीर के भोग, शरीर की वासनाएं, शरीर की इच्छा, शरीर की तृष्णा, शरीर के धर्म, शरीर की आसक्ति, शरीर का आकर्षण, शरीर का स्पर्श। मनुष्य चेतना को देखा जाए तो सारा जीवन शरीर के इर्द गिर्द ही घूमते रहता है। वो होती है उसकी वासना, वो उसको प्रेम कहता है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है सजगता का। अभ्यास नंबर पहला, हर शारीरिक क्रिया को होश में करना है। चल रहे हैं तो ये अनुभव हो कि मैं चल रहा हूं। खा रहे हैं तो मैं खा रहा हूं। अपने आप को जागृत करना है, टाइम, प्लेस एंड पर्सन। मैं कौन हूं जो खा रहा है, ये कौन सा समय है जिस समय मैं खा रहा हूं, और ये कौन सा स्थान है। टाइम, प्लेस एंड पर्सन स्टेबिलाइजेशन, रिमेम्बरेंस। ये समय कौन सा है, इंटरनेट पर बैठे हैं, मोबाइल पर है, मैं कौन हूं जो देख रहा है, ब्रह्मा कुमार या शूद्र कुमार, और फिर उसको उठाओ। समय कौन सा है, कौन है व्यक्ति, कौन है, और स्थान, किस स्थान पर हूं मैं। बाबा ने कहा है तुम स्टेज पर हो, सारी दुनिया तुमको देख रही है, तुम्हारा हर कर्म इतना दिव्य हो, इतना श्रेष्ठ हो। व्यक्ति का चरित्र वास्तव में वो है जब वो अकेला कमरे में है, और कमरे में अंधकार है, और वहां कोई नहीं, और दरवाजे और खिड़कियां बंद है, और हाथ में मोबाइल, और रात के 11 बजे हो, तब वो क्या करता है। वो उसका चरित्र है, वो नहीं जो आकर भाषण देता है और दूसरों को दिखाता है कि मैं योगी हूं, और मैं तपस्वी हूं, और मैं सेवाधारी हूं, और मैंने ये त्याग किए हैं और ऐसा ऐसा समर्पण किया है, ये तो बाहर का है। अत्यंत एकांत में हम क्या कर रहे हैं वो चरित्र है, दैट इज कैरेक्टर। बाकी जो है वो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है। यदि कैरेक्टर पेड़ है तो उसकी परछाई व्यक्तित्व है। कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी दोनों अलग है। इसलिए सबसे पहला अभ्यास कौन सा करेंगे? सजगता का। चलते हुए सजगता कि मैं चल रहा हूं, कौन चल रहा है, किस समय चल रहा है, किस स्थान पर चल रहा है, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, हर कर्म गाड़ी चला रहा हूं, हर कर्म होश। तो इससे क्या होगा? जागृति बढ़ेगी। केवल मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा हूं आत्मा हूं कहने से नहीं होगा, कुछ और करना पड़ेगा। और दूसरा अभ्यास साक्षी का अभ्यास, मैं देखने वाला हूं, मैं देख रहा हूं, दर्शक हूं। जो अभी आप बैठे हैं, एक दर्शक की तरह मैं आत्मा सुन रही हूं, दर्शक का भाव, मैं आत्मा बोल रही हूं। अपने सारे जीवन की घटनाओं को दर्शक की भांति देखना है, बचपन से लेकर अब तक जो कुछ हुआ, जब तक बाबा, जब से बाबा के बने तब से अब तक क्या क्या हुआ, सारी घटनाओं को एक बड़े से स्क्रीन पर देखना है। क्योंकि कुछ कुछ घटनाएं दुखद है, बड़ी पीड़ादायक है, दर्दनाक है। हम उसे अभी भी याद करते हैं तो उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जिस अवस्था में थे। 100 लोगों के सामने किसी ने हमारा अपमान कर दिया था, विरोध कर दिया था, निंदा की थी, ग्लानी की थी, अगर उस क्षण को आज याद किया तो उसी क्षण में हम पहुंच जाते हैं और वो एक घाव हमारे भीतर है। इतना गहरा घाव है जिससे हमने अत्यंत प्रेम किया, वो छोड़ के चला गया, उसने धोखा दिया। जिसे हमने अपना माना वो कभी अपना था ही नहीं। जिस पर हमने विश्वास किया उसने विश्वासघात किया। वो दर्द, वो चोट, वो पीड़ा, या हमने ऐसा एक अपराध कर दिया, एक ऐसा पाप, और जो हमसे हो गया। क्योंकि जब वासना जागती है तो बुद्धि छुट्टी पर चली जाती है। मैडनेस, और उसी वासना के क्षण में और उसी आवेश के क्षण में हमसे जो महापाप हो गया है, जो हमने अब तक किसी को नहीं बताया, और भीतर ही भीतर एक दर्द, एक पीड़ा, एक पश्चाताप बनकर है अतीत में। वो जब तक हम उसे देखते नहीं साक्षी होकर, अब जो देखते हैं दिन में वो आइडेंटिफिकेशन वाला देखते हैं, उसको हम याद करते, याद करते ही वही आंसू, वही दर्द, वही पीड़ा आ जाती है। उसको साक्षी होकर देखना है। और ये अभ्यास करना है केवल अमृत वेला, और वो भी अमृत वेले की शुरुआत नहीं, नहीं, बीच में। अमृत वेला चालू हो गया मे बी 4:15 से 4:20 के बीच, 4:20 से 4:30 के बीच, 4:30 बजे के आसपास। बीच में लाना है जीवन के वो सारे दर्दनाक दृश्य या जो दृश्य हो चुके हैं, और उन्हें देखना है बिना डरे, केवल स्नेहमयी दृष्टि देनी है। जो दर्द है उसका इलाज है स्नेहमयी साक्षी भरी दृष्टि। केवल देखना है उसको, करना कुछ भी नहीं। ये दृष्टि उसको मिलते ही हीलिंग स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो हम देखते हैं वो दिन में देखते हैं, जहां कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में हम घुस नहीं पाते, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस अचेतन में, और वो तो बड़ा गहरा है, लेयर्स है उसके। इसलिए अपने पूरे जीवन को रोज एक बार साक्षी होकर देखना है सारी घटनाओं को। यहां जन्म लिया, इस गांव में जन्म लिया, इस घर में पले, ये माँ बाप, ये बहन भाई, फिर बड़े हुए ये स्कूल, ये कॉलेज, या जहाँ आप थे, फिर आगे शादी या समर्पण या सेंटर या घर या गृहस्थी या जॉब या करियर, जो कुछ किया वो सारा सारा सारा, जो जो लोग आए, जिन जिन स्थानों पे हम बचपन से गए हैं, उन सारे स्थानों को, उन सारे लोगों को जो हमारे जीवन में आए हैं, साक्षी होकर उनको देखना है। और अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से जीवन की यात्रा चालू हुई, यहाँ मैं खड़ा हूँ। ये साक्षी भाव आते ही आत्मविमानी स्थिति पुष्ट होगी, क्योंकि चेतना साक्षी है और साक्षी की साधना है। तो ये दो अभ्यास करने हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं। कैसे चलेंगे? होश में। अगर ये हाथ यहां से हमने यहां रखा, वो भी जानकारी के साथ, बेहोशी में नहीं। और ये प्रैक्टिस है हर दिन की, और कभी भी प्रैक्टिस करो। तीसरा अभ्यास तटस्थ बैठने की, अधिष्ठान। बुद्ध आते हैं, देखते हैं सारिपुत्त, उनका एक शिष्य बैठा है तप में, और तथागत के मुख से ये उदान निकले, ये वचन निकले, आह, जैसे कोई हिमालय पर्वत अचल खड़ा है। वो बैठा है ध्यान की मुद्रा में, न शरीर हिल रहा है, कुछ भी नहीं। तो इसका अभ्यास करना है बिना हिले डुले, 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, ट्रिपल लॉक। ये योग अभ्यास नहीं है, ये राजयोग नहीं है। राजयोग तो अलग है, जो हम सुबह करते हैं। इस साधना को दोपहर में अपने कमरे में या कभी एकांत में बैठकर करना है। ट्रिपल लॉक, हाथ बंद, लॉक, पैर लॉक और आंखें बंद, अधिष्ठान, जिसमें हम केवल देखेंगे स्थिर, और ऐसे स्थिर शरीर में ही आत्मा का प्रतिबिंब दिखता है। वो हिलते रहे, डुलते रहे, उसमें बाबा से बातें हो सकती है। राजयोग के लिए शरीर को साधना है, शरीर स्थिर हो जाए। मुरली क्लास में जाओ तो अभ्यास करो कि बस एक ही स्थिति में बैठना है, हाथ में डायरी पेन है उतना ही ले, बस पैर ना हिले। बीच बीच में ये अभ्यास करना है, अपने शरीर को साधना है, अपने शरीर की इंद्रियों को अपने वश में लाना है, आंखों को, ये आंखों की आदत है यहां वहां देखने की, अभ्यास करना है नजर नीचे, इधर देखो उधर देखो। जैसे ही लोगों को देखते इंटरप्रिटेशन चालू होता है। हम देखते हैं माउंट में ऊपर नक्की लेक है, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको रोज देखते हैं वॉकिंग करते हुए, हमेशा नजर उनकी नीचे होती है। ऐसे कुछ भाई है, कोई मतलब ही नहीं है कौन कहाँ जा रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या कपड़े पहने हैं, क्या है, कुछ नहीं, नजर नीचे। और ये अभ्यास करके देखो कि यहां से डाइनिंग में जा रहे किसको क्या देखना है, नजर नीचे। हाँ, अगर कुछ देखना ही है, ठीक है, ओम शांति, हो गया, नजर नीचे। तो धीरे धीरे आत्माभिमानी स्थिति पुष्ट होगी, पहला। दूसरा है प्यूरिटी। हम 7 शब्द लेंगे स्पंदन के, पहला है सोल कॉन्शियसनेस और दूसरा है प्यूरिटी, पवित्रता, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य काम एक ऊर्जा है, उसको अगर दबाया तो सुनामी होगा, विस्फोट आएगा, होगा एक दिन। और दुनिया भर में हम जो अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये आश्रम फला आश्रम, उस आश्रम का पहला नियम था ब्रह्मचर्य, उसी आश्रम का मठाध्यक्ष पकड़ा गया, अभी जेल में है, ये चर्च वो चर्च, ये मॉन्क ये मोनेस्ट्री, ये मठ वो मठ, ये आश्रम वहां का आश्रम, क्यों? क्योंकि काम का दमन किया है, और काम तो ऊर्जा है, भयंकर ऊर्जा, उसका दमन हो ही नहीं सकता। अगर जो जितना दमन करेंगे, केवल ऊपर ऊपर से सुना है काम महाशत्रु है, आदि मध्यंत दुख देता है, तुम्हें काम कटारी नहीं चलानी है, इतना केवल सुन लिया, जबरदस्ती फॉलो कर रहे, तो वो ऊर्जा अकेले में बाहर निकलेगी और बेचैनी लाएगी। इसलिए सिगमंड फ्राइड भी एक रीति से राइट ही था जब उसने कहा, और उसी के बाद सारे विश्व ने काम विकार को स्वीकार कर लिया। वो एक ही प्रथम व्यक्ति था जिसने कहा, ये सारी विकृतियां जो मानव समाज में हुई है वो काम के दमन से हुई है, इसीलिए उसे मुक्त कर दिया जाए। और सारे देशों ने उसे मान लिया और सारे देशों में काम विकार बढ़ गया। द फादर ऑफ साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्राइड। पर वो सिगमंड फ्राइड कभी भारत की भूमि में नहीं आया था, ये ना भूले। उसे पता ही नहीं, उसका पाला कभी भारत के ऋषि तपस्वियों मुनियों से नहीं पड़ा था। उसे पता ही नहीं कि ब्रह्मचर्य भी एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, और इसी शक्ति के आधार पर आत्माओं ने ऐसी ऊंचाई को पाया है जो सिगमंड फ्राइड ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सारी फिल्में, सारी किताबें, सारी मूवीज और सारे डॉक्यूमेंट्रीज और सारे मीडिया चैनल्स, सब जगह काम ही काम है, विकार ही विकार। तो काम को दबाया नहीं जा सकता। सिगमंड फ्राइड इस बात में राइट है कि जितने लोग पागल है और पागल खानों में है, वो सब इसको दबाने के वजह से, सप्रेशन और रिप्रेशन के वजह से हुआ है। द सप्रेशन ऑफ सेक्स लस्ट। ना ही इस काम विकार से लड़ा जा सकता है, वो बहुत शक्तिशाली है। तीन चार दिन पहले मुरली में आया था, रावण बाप से भी तीखा है, उसको हराया नहीं जा सकता, वह अत्यंत शक्तिशाली है। तीसरा उससे भागा भी नहीं जा सकता, जहां जाओगे वहां आएगा। लोगों ने आंखें फोड़ दी, पर वासना से मुक्त नहीं हो पाए। जन्मांध जो लोग हैं उनमें भी उतनी ही काम वासना है जितनी की आंखों वालों में है। ना तो इसे परास्त किया जाता है, ना उससे भागा जाता है, ना ही उसका विनाश किया जाता है। वो ऊर्जा है, उसका रूपांतरण होता है, उसकी दिशा बदली जाती है, और वही काम जो ऊर्जा है वो जाकर कला बनती है तो या तो संगीत बनता है, वही काम जो हृदय में प्रवेश करे तो प्रेम बनता है, गले में प्रवेश करे तो तेजस्वी वाणी बनती है, और वही काम जो रूपांतरित होकर ऊर्ध्वरेता योगी बनता है, सब्लिमेशन होता है, उदात्तीकरण होता है, उसका डिवाइनाइजेशन होता है, और जो ब्रेन में जाता है और ओजस बनता है, उसका रूपांतरण हो सकता है, उसकी दिशा बदली जा सकती है। वही काम चिंतन बन सकता है ज्ञान का, वही काम योग बनता है। इसलिए दमन की फिलॉसफी से कुछ नहीं होगा। इसलिए परमात्मा जब धरा पर आए, उन्होंने एक नया मार्ग बताया, ना दमन का मार्ग ना भोग का मार्ग। एक तो दमन है, दबा दो, और दूसरा है छोड़ो, जो संसार ने अपनाया उसमें कूद जाओ, उसमें भोगो। पर भोग का परिणाम क्या निकला? पश्चाताप। भोग का परिणाम क्या निकला? बीमारियां। भोग का परिणाम क्या निकला? थकान, कमजोरी, रिक्तता, खालीपन। क्योंकि काम वासना दुष्पूर है, अर्थात जो कभी भी तृप्त नहीं होती, कभी भी नहीं, यही उसका स्वभाव है। जीवन भर भोगने के बाद भी व्यक्ति वंस मोर की कामना से ही शरीर छोड़ता है। उसका वो स्वभाव को समझना ही ब्रह्मचर्य है। प्रेममयी ज्ञानमयी समझ, ये है ब्रह्मचर्य। प्रेममयी ज्ञानमयी समझ, न दमन न भोग, उसको समझना है ये है क्या। सौंदर्य, ये सुंदर है, ये देह सुंदर है, वो सौंदर्य समय का किराएदार है, मालिक नहीं। वो क्षणिक है, वो समय का बंदी है। अगर देखना है तो आर पार देख लो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हे अर्जुन, जन्म है, मृत्यु है, जरा है और व्याधि है। उसी शरीर को जिसके पीछे पागल है, उसी शरीर को आगे तक खींच के देखो। हॉस्पिटल में जाओ और देखो, वो सारे टीबी पेशेंट, वो सारे बर्न पेशेंट, वो सारे डायलिसिस पेशेंट, वो सारे कैंसर पेशेंट, वेयर इज द ब्यूटी? कहाँ है वो सौंदर्य जिसके पीछे पागल थे? कहाँ है? ये चमड़ी के नीचे क्या है? मलमूत्र से भरा यह देह, इसमें कहाँ सौंदर्य? चलता फिरता शौचालय, इसमें कहाँ सौंदर्य? परंतु काम अंधेरा है, धुंध सी छा जाती आंखों के सामने, कुछ नहीं दिखता है। इसलिए ब्रह्मचर्य केवल रटन से उपलब्ध नहीं होता है, केवल जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता। और जिन्होंने लाया, फिर 10 साल और 20 साल के बाद क्यों छोड़कर चले गए? और इस यज्ञ से भी जो गए हैं आज तक, वो क्यों गए? ये कोई वासना थी, कोई इच्छा थी, कोई अतृप्त कामना थी जो यहाँ पूरी नहीं हो पाई, और वही कामना उन्हें घसीट कर यज्ञ से बाहर ले गई। आकर्षण वास्तव में व्यक्ति का है ही नहीं, अनुभव का है। उस व्यक्ति से जो अनुभव हुआ, स्पर्श का, प्रेम का, हमें लगता है कि हमारा प्रेम है। वास्तव में वो प्रेम नहीं है, वो अकेलेपन का भय है। इट इज द फियर ऑफ लोनलीनेस। और हमने उसे प्रेम की संज्ञा दी है। ग्रामर मिस्टेक है, संज्ञा नाउन इज इनकरेक्ट, इट्स अ ग्रामेटिकल एरर। और वो जो अनुभव हो रहा है, जो सुख दूसरे से मिल रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है, वो दूसरे से तो कभी था ही नहीं। जैसा एक कुत्ता होता है और हड्डी को पकड़ता है, और हड्डी सूखी हड्डी है, उसको चबाता है और उसी को चबाते रहता है, उसके ही मुंह से खून निकलता है और वही खून पीता है, और उसको लगता है ये सुख उस हड्डी से मिल रहा है। चाहे स्त्री या पुरुष, दोनों को लगता है एक दूसरे से सुख मिल रहा है, ना इससे मिल रहा है ना उससे मिल रहा है। वो एक भ्रामक सुख है, इट इज एन इल्यूजरी हैप्पीनेस। वो एक मृग मरीचिका है, एक भ्रम। इसलिए कहा, जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया, टेस्ट कर लिया, उसको शरीर के ये सारे सुख फीके लगते हैं। इसलिए दूसरा है पवित्रता। विधि है आर पार देख लेना। मूवी को थोड़ा सा मत देखो, पूरा फास्ट फॉरवर्ड करके लास्ट तक देखो। और लास्ट में है पश्चाताप, और लास्ट में है दुख, और लास्ट में है कुंठा, और लास्ट में है रिक्तता, और लास्ट में है थकान, और लास्ट में है बेचैनी, और लास्ट में है क्रेविंग टू रिपीट द सेम, एक तलब, क्योंकि वो वहीं नहीं रुकता। लस्ट अट्रैक्ट्स लस्ट। तो दूसरा है पवित्रता। उसको देखना है, उसको समझना है। जिसने समझ से किया, उसी का छूटेगा, नहीं तो जीवन पर्यंत वो पीछा करते रहेगा। वही सुबह सुबह प्रतिज्ञाएं करते रहो, मैं आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और जिस दिन प्रतिज्ञा करते उसी दिन वो टूटती है। तीसरा अमृत वेला। अमृत वेला को मास्टर करना है। जैसे कोई स्किल की मास्टरी होती है ना, जैसे लोग पीजी करते हैं, पीएचडी करते हैं, अमृत वेला को अपने पीएचडी का टॉपिक बनाना है, थीसिस का टॉपिक। उसका सब कुछ हमें पता हो। यहां से जाने से पहले अमृत वेला की एक किताब है, यज्ञ की अमृत वेला, छोटी सी, कईयों ने पढ़ी होगी, फिर भी रिपीट उसको पढ़ो। एक मास तक केवल अमृत वेला की किताब ही पढ़ो, दूसरा सब छोड़ दो, एक्स्ट्रा रीडिंग्स। उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, इसको अगर किसी ने मास्टर कर दिया तो बाकी सब कुछ सरल हो जाएगा। ऐसी अपनी दिनचर्या को सेट करना है कि जिससे अचानक अपने आप बिना किसी अलार्म के आँख खुल जाए। प्रातः स्मरा मेरे दिशंस फुरदात्म तत्वम, सुबह सुबह उठो और उस आत्म तत्व का चिंतन करो। सुबह सुबह जहाँ सन्नाटा हो और जहाँ वायुमंडल में ऐसी आवाज चल रही हो, सिबिलेंस ऑफ द नाइट, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिबिलेंस, उठ जाओ सुबह सुबह 1:45-1:30 बजे और बैठो अचल तपस्वी की तरह। आई विल ड्रिंक द एंटायर ओशन बिफोर मी, द माउंटेन्स विल क्रम्बल, स्वामी विवेकानंद ने कहीं कहा है, पूरा सागर मैं पी जाऊंगा, मेरे सम्मुख पर्वत सारे गिर जाएंगे। ऐसी ऊर्जा स्वयं में प्रकट करनी है सुबह सुबह उठकर, जहां सन्नाटा हो ऊर्जा लो, ऊर्जा आएगी। उठेंगे ही 3:30-4:00 और 4 बजे और भाग भाग के जाएंगे और गुड मॉर्निंग बाबा, और तुम बाप हो, तुम टीचर हो, तुम सदगुरु हो, तुम ये भी हो, तुम प्रेम के सागर, आनंद के सागर, प्यार के सागर, फिर तुमने मुझे तिलक दे दिया, फिर इसको सकाश और उसको सकाश, और बेटे का भी कल्याण कर और पति का भी कल्याण कर, और इसको भी ज्ञान मिलाओ और उसको भी ज्ञान मिलाओ, और सब कुछ सबको ज्ञान मिलाओ। ओम शांति। 4:45 बज गए, भागो सोने के लिए। फिर से बातें करते करते जाते योग करने, योग करके बातें करते करते कमरे में, ये कैसा अमृत वेला है। अमृत वेला इज अ साइंस, मास्टर इट। इट्स अ स्किल, मास्टर इट। इट्स एन आर्ट, डेवलप इट, वर्क ऑन इट। अपनी सारी दिनचर्या उथल पुथल करनी पड़ेगी, इधर उधर करना पड़ेगा। सो ही रहे 11:12 बजे, कैसे उठेंगे। जल्दी उठने की विधि है जल्दी सोना, और जल्दी सोने के लिए दिनचर्या को आगे पीछे करना पड़ेगा। संसार भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो कैसे होगा। बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, हो सकता है जॉब ही चेंज करना पड़े, हो सकता है तो शहर भी बदलना पड़े। ही हु गिव्स टू गॉड सेकंड प्लेस इन लाइफ गिव्स हिम नो प्लेस, वो जो अपने जीवन में परमात्मा को दूसरे स्थान पर रखता है वो उसे उसे किसी भी स्थान पर नहीं रखता है। बाइबल में लिखा है आई थाय गॉड थाय लॉर्ड, आई एम अ जेलस गॉड, मैं जो तुम्हारा परमात्मा हूं, मैं जो खुदावन हूं, वो बड़ा ईर्ष्यालु परमात्मा है। मेरे अलावा अगर तुमने किसी से प्यार किया तो देख लेना, आई एम द फर्स्ट। वो प्रायोरिटी है जीवन की, और उससे मिलन का समय केवल अमृत वेला है। वही समय है जहां पर आत्मा बहुत सहज अशरीरीपन का अनुभव करती है। सारे दिन भर तो इतनी सेवाएं और इतना संसार लगा पड़ा है, नहीं हो पाता। कितना भी करो, हम देखते हैं पांडव भवन में ऊपर कभी भी जाओ, 1:30 बजे जाओ तो भी माताएं वहां बैठी है शांति स्तंभ पर, 2 बजे जाओ पहुंचो तो बाबा का कमरा भरा हुआ है, 1:45 बजे जाओ तो कुटिया भरी हुई है, माताएं बैठी है ऐसी एकदम बाबा से सारी किरने लपेट रही है पूरा। एक तो अनपढ़ माता है, हमारे ऊपर क्लास में आती थी, हम लोगों ने पूछा था तुम क्या योग करती हो, महाराष्ट्र की माता थी, पढ़ी लिखी नहीं, उसको ना मुरली पढ़ने आता है, ना समझता है, ना हिंदी आती है। उसने कहा मेरे को कुछ समझता नहीं है, तो योग क्या करती हो सुबह 2 बजे। उसने कहा मैं ऐसी आत्मा को निकालती हूँ, ऐसी बाबा के सामने रखती हूँ, बोलती जो करना है कर, ये है महाराज योग। ना मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल है जो बेटे ने दिया है, उसमें बस हेलो उतना ही आता है, उसको बंद करना भी नहीं आता है, कैसे बंद करने का। राजयोग, जो करना है समर्पण की पराकाष्ठा है, सर्वस्व समर्पण। चौथा एन नेचर, प्रकृति। प्रकृति के सानिध्य में जाना है, उगते हुए सूरज को देखना है, नंगे पांव मिट्टी पर चलना है, पेड़ों को स्पर्श करना है, पत्तों को देखना है, फूलों को देखना है, झाड़ों को देखना है, झरनों को देखना है। टू बी इन कंपनी ऑफ नेचर, निसर्ग जो है, प्रकृति जो है निर्विकार है, और प्रकृति के सानिध्य में जो समय बिताते हैं वो अपने आप उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं। जहाँ मौन है, जहाँ एकांत है, बैठ जाओ, छत पर जाओ और बैठो, किसी गार्डन में जाकर बैठो, कहीं पहाड़ है वहाँ जाकर बैठो, रोज कुछ समय निकालो और उस प्रकृति के सानिध्य में जाओ, तो अनुभव होगा एकात्मता का, सब कुछ मैं ही हूँ, ये सब में मैं समाया हुआ हूँ, पत्तों पत्तों में मेरा ही प्रतिबिंब है, मैं विशार हूँ, विराट हूँ, अनलिमिटेड, ऐसा अनुभव होगा। देखो उन पक्षियों को, सुनो उन पक्षियों के गीत, जितना ज़्यादा प्रकृति के नज़दीक जाते प्राणिक ऊर्जा हमारे अंदर बढ़ती है। सभी बीमारियों का एक ही कारण है, प्राण ऊर्जा की कमी, और सभी बीमारियों का एक ही उत्तर है, प्राण ऊर्जा को बढ़ा देना। तो प्राण ऊर्जा मिलेगी शुद्ध वायुमंडल, शहरों में जाओ तो इतना हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स है, 300-400 मुंबई दिल्ली, ऊपर माउंट में एयर क्वालिटी इंडेक्स इज 50-60, बहुत कम पोल्यूशन हो सकता है, जहां आप हो वहां पोल्यूशन बहुत है, इसलिए सुबह का समय है, गार्डन में जाके बैठो, कहीं होगा नहीं है तो छत पर जाओ, परंतु प्रकृति के सानिध्य में जाना है, वहां जाकर बैठ के पढ़ो कुछ या प्रकृति को देखो, साक्षी भाव का अभ्यास करो, पेड़ों को देखो, हाय प्राणिक फील्ड, जंगल स्नान, कभी कभी जंगल की यात्रा करो पूरा दिन भर, वेरी हाय प्राणिक फील्ड। वृक्षवल्ली के सानिध्य में जाओ, पांचवा डी डिजिटल डिसिप्लिन, ये सबसे महत्वपूर्ण है, मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब, सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट्स, इंटरव्यूज, पॉडकास्ट्स, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, पॉडकास्टर्स, न्यूज़ एंकर्स, चैनल्स, सीरीज, ट्रेलर्स, मूवीज, इसमें चेतना अगर फंस जाए और ये एडिक्शन बन जाए ये मोबाइल, तो इससे अधिक ऊर्जा की हानि और किसी से नहीं होती है। एक एडिक्शन बन जाता है ये, चैट कॉल, वीडियो कॉल, यही करते रहते हैं, टाइम एनर्जी वेस्ट, स्क्रीन टाइम, इसलिए डिजिटल वेलनेस एक बहुत बर्निंग टॉपिक है। एटलीस्ट सोने से एक घंटा पहले उसको दूर कर दो, अगर रात में कोई इमरजेंसी नहीं है उसको स्विच ऑफ कर दो, सबसे बेस्ट है जिस कमरे में हम सोते हैं वहाँ नो इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे बेस्ट, पर अगर है भी तो एटलीस्ट अपने बिस्तर से वो दूर, उठते ही तुरंत उसको ना देखें, डोपामिन डंपिंग, डोपामिन लोडिंग और ये जो सारा कुछ है उससे एकाग्रता भंग हो जाती है, स्थिर नहीं रह पाता चित्त और उसमें इतना विकार भरा हुआ है। सेवा का सबसे बड़ा साधन भी वही है, ज्ञान योग का भी सबसे बड़ा साधन है वो, अगर हम उसको प्रयोग कैसे करते हैं, एमलेस उसके अगर अंदर घुस जाते हैं, रैंडम सर्फिंग, रैंडम ब्राउजिंग, तो ये सबसे बड़ी माया है। कुछ लक्ष्य नहीं है, मोबाइल है हाथ में और बस देखे जा रहे हैं, इधर देख रहे, उधर देख रहे, इधर देख रहे, क्लिक 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 क्लिक, टाइम वेस्ट, लाइक्स डिसलाइक्स यही देखते रहते हैं। इस पर हर एक ने इंडिविजुअल काम करना है। कहीं ये एडिक्शन तो नहीं है, सोचो। और यहाँ अगर भट्टी में आए हैं तो हम कहेंगे कि जब तक भट्टी में उस 3 दिनों के लिए मोबाइल स्विच ऑफ कर दो तो बहुत अच्छा। उसके हम गुलाम ना हो, मालिक हो। उसका हम प्रयोग करें जब हमको करना है। उससे मुरली पढ़ सकते हैं, क्लासेस सुन सकते हैं, और हो सके तो सुनो ऑडियो, अवॉइड यूट्यूब्स। बहुत बड़ी माया है वहाँ पर, क्या देखना है सुनो, ऑडियोज अवेलेबल है। ये स्वयं प्रयोग करना है। अगला है ए, अमृत, ज्ञान अमृत। आज सुबह की मुरली ज्ञान की ये बातें दिल से लग जाए। बीच में एक लाइन आई है, इस ज्ञान का चिंतन करना, इस ज्ञान का मनन करना, इस ज्ञान पर डिस्कशन करना, इस ज्ञान के लिए एक छोटा सा स्टडी सर्कल बनाना है जिस पर बैठ के अव्यक्त मुरलियों की, जितनी अव्यक्त मुरलियाँ हैं हमारी, क्या सारी पढ़ के हो गई 1969 से 2017 तक की, साकार मुरलियाँ, अव्यक्त मुरलियाँ, अव्यक्त संदेश की एक किताब है। ये है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सिलेबस। क्या सारी अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ के हो गई है? ऑलरेडी इतना लेट आए हैं, क्या सारा पढ़ के हो गया है? स्पिरिचुअल इमरजेंसी क्रिएट करनी है अपने भीतर। लोग इतने आगे चले गए, हम पीछे रह गए। स्टडी करनी है, चिंतन करना है, मनन करना है। एक टॉपिक लो और उसका विस्तार करो, एक टॉपिक लो और उस पर लिखो रोज, जैसे एक स्टूडेंट लिखता है, एक डायरी, एक पेन, एक पेंसिल, सब कुछ हो हमारे पास। सारी अव्यक्त मुरलियों की किताबें, टेस्ट, एग्जाम्स, एक स्टूडेंट जैसा एटीट्यूड। स्टूडेंट होता है ना छोटा सा, सीखता है वो, उसे सीखना होता है, लर्निंग एटीट्यूड होता है उसका, कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड होता है उसका, मुझे सीखना है। अपने आप के लिए टाइम सेट करो, अगले 3 मास में मुझे ये काम करना है। और अमृत वेला केवल योग ही नहीं करना है, अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो ज़्यादा समय हमारे पास होता है। अगर 3 घंटे हमारे पास है अच्छे 2 से 5 वाले अमृत वेला में, तो उसमें हम आधा घंटा मुरली स्टडी को भी लगा सकते हैं। अभी अभी मुरली में था बाबा, 2 बजे उठते और लिखते, अभी था ना कल परसों। तो केवल बैठ के योगी नहीं करना है, चलते फिरते उठो, बाबा से बात करो, अशरीरपन का अनुभव करो, अधिष्ठान का अभ्यास करो, कुछ लिखो, कुछ पढ़ो, कुछ सुनो। क्योंकि वही टाइम है जब हमारा ब्रेन बहुत संवेदनशील होता है। अपने जीवन की जो समस्या है उसके बारे में हम दिन भर सोचते, अमृत वेला खाली योग करते। उस टाइम को, उस योग का फायदा उठाना है। जब मन एकाग्र है तभी सोचो कि इसका क्या करूँ, क्या किया जाए। तो ज्ञान अमृत, लास्ट एन। आपने 3 शब्द तो सुने हैं, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी, सुने हैं ना सबने। उसमें चौथा जोड़ दो, निराहारी। उसमें कौन सा जोड़ देना है? निराहारी। अपने भोजन पर कार्य करना है। अगर जरूरत से ज्यादा हम उसमें डाल रहे हैं तो बीमारियां और भारीपन होगा। इसलिए जितना हो सके ऐसा भोजन हो जिसमें 3 बातें हो, उत्तेजना ना हो, जो हम में आलस ना उत्पन्न न करे, प्रमाद, और तीसरा जो हमें शक्ति दे। ऐसा नहीं कि हम जो खा रहे हैं वो शक्ति छीन रहा है, उसको पचाने में इतना टाइम जा रहा है। इसलिए धीरे 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 भोजन पर कार्य करना है। और जितना जितना भोजन शुद्ध, सात्विक, हल्का होते जाएगा, अपने आप अशरीरी अवस्था रहेगी 24 घंटे, अपने आप शरीर में ऊर्जा, शक्ति का अनुभव होगा। नहीं तो हमको लगता है ये भोजन हम खा रहे उससे शक्ति आ रही है, शक्ति आ नहीं रही है, कमजोरी का अनुभव होता है। लोग कहते खाओ 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 खाओ, शक्ति आएगी, आ नहीं रही है फिर, क्योंकि सारी ऊर्जा उसको पचाने में जा रही है। इसलिए धीरे धीरे खोज करनी है सात्विक आहार की, खोज करनी है मुझे क्या लेना है, समझना है मेरा और भोजन का क्या संबंध है, रिलेशनशिप, इंडिविजुअल रिलेशनशिप। खोज करनी है प्राणिक ऊर्जा की, प्राण ऊर्जा सबसे अधिक किस में है। हम जो डाल रहे हैं शरीर तो पूरा समय उसको पचाने में लगा है, और बीमारियां वो अलग, और भारीपन वो अलग, और सुस्ती वो अलग, तीनों बार पका हुआ भोजन खाना अर्थात शरीर के साथ सबसे बड़ा अत्याचार है। धीरे धीरे कार्य करना है, स्टडी करनी है, सुनना है दूसरों के अनुभव, लोगों ने कैसे अपनी बीमारियों को ठीक किया केवल आहार से। तो कितनी पॉइंट्स हो गई? 7। पहला बताया सोल कॉन्शियसनेस, आत्माभिमानी स्थिति की 3 बातें। दूसरा बताया संपूर्ण पवित्रता, पवित्रता का दमन नहीं करना है, उसे समझना है। पवित्रता की जितनी मुरलियां है वो सारी स्टडी करो, उसमें गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। तीसरा बताया अमृत वेला, सुबह सुबह उठ जाओ ताकि हम जल्दी अपने आप का अनुभव कर सके। चौथा बताया डिजिटल डिसिप्लिन, नेचर प्रकृति, टाइम निकालना है, प्रकृति के पास जाके बैठना है। व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउ एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप एंड काउ। अंग्रेजी कवि लिखता है हम कैसा हमारा जीवन है जिसमें कोई टाइम ही नहीं है हमारे पास। उस गाय को देखो किसी आराम से खड़ी है, उसके पास टाइम है, हमारे पास नहीं, हम भाग रहे हैं। प्रकृति में कौन सी ऐसी चीज है जो भाग रही है? कुछ भी नहीं भाग रहा है, सब नितांत आराम से चल रहा है। ये मनुष्य चाहिए जो पागलों जैसा भाग रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं है, और कहां भाग रहा है वो भी उसको पता नहीं है। जल्दी करना है, ये एक संस्कार है उतावलापन, ये करूँ वो करूँ वो करूँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ। हम देखते हैं पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट होते फ्रैक्चर होके, तो फिर बेचैनी होती, मुझे सेवा करनी है। अरे कहाँ सेवा, अभी चुपचाप बैठो 1.5 महीना बेड पर फ्रैक्चर लटका के। इसका भी अभ्यास करो मनसा सेवा का। अगला डिजिटल डिसिप्लिन, देखना है कहाँ ये हमारा जीवन खा तो नहीं रहा है पूरा। अगला अमृत, कौन सा अमृत? ज्ञान का अमृत, उसे अमृत की तरह अनुभव हो, ज्ञान अमृत है। सला कल्प तरुण चे आरव चेतना चिंता मणिन से गाव बोलती जे अर्णव पीयूषा चे, ऐसा अनुभव। चिंतामणि का जैसे गाव है, बोल रहे हैं तो अमृत का सागर निकल रहा है, ऐसी चेतना। और लास्ट बताया भोजन, निराकारी निर्विकारी निरंकारी के साथ में भोजन को समझना है। इतना जो उससे आ सकती है, निरंतर भोजन संबंधी विचार, भोजन संबंधी चर्चा, आपके आज क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, रात में क्या खाना है, खाऊं म्याऊं, बस खाने का ही चिंतन है, दिन रात क्या खाऊं, सभी स्थिर, पेन पेंसिल बाजू में। एक बार खड़े हो जाएंगे और फिर बैठ जाएंगे, बैठ जाओ। अच्छी नींद तो नहीं आ गई? बैठ जाएंगे। सभी स्थिर, आवाज नहीं, बातचीत नहीं, स्थिर, शरीर को स्थिर कर दो। अगले 15 मिनट तक शरीर को किसी एक ही मुद्रा में स्थिर कर दो, हिलना ही नहीं, पैर भी ना हिले ना उंगली हिले, जिह्वा भी निश्चेष्ट। आवाज सुनिए, संसार की आत्माएं दुखी है उदास है, हमारी शक्तियों की के प्रकंपन उन तक पहुंचने चाहिए, हमारी आवाज उनकी आह, हम उनकी आस है, वो सुनना है, दुखियों के दर्द को सुनना है, उन्हें शक्तियां पहुंचानी है। शिव की जो शक्ति है मैं हूं, ऊर्जा हूं, मैं प्राण स्वरूप ऊर्जा हूं, दिव्य स्पंदन हूं, निर्विकार चेतना हूं, मेरे अंग अंग में परमात्मा शक्ति समाई है, मेरे रोम रोम में पवित्रता की ऊर्जा है, मैं ब्रह्मचर्य का शिखर हूं। सभी भ्रुकुटी के मध्य में स्वयं को एक दिव्य ऊर्जा के अनुभव में स्थित कर देंगे। मस्तक पर एक ज्योति, अत्यंत शुद्ध, अत्यंत पवित्र, पूरे हॉल में एक दिव्य वायुमंडल, शक्ति का अनुभव, बिना आवाज किए अव्यक्त स्थिति में और अशरीरी अवस्था में सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे बिना आवाज किए, और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे। कोई आवाज नहीं, हमारी तरफ देखते हुए हाथ पकड़ेंगे, इधर देखते हुए इस तरह से, आंखें बंद, दो हाथों से दो व्यक्तियों का हाथ, अनुभव करो। मेरे दोनों हाथों से पवित्रता की ऊर्जा इस आत्मा को, इन आत्माओं को जा रही है। आंखें बंद, पूरे हॉल में चारों ओर पवित्रता की ऊर्जा है। इन दो आत्माओं से पवित्रता की ऊर्जा मेरे हाथों में आ रही है। मेरे अंग अंग में पवित्रता, मेरे रोम रोम में पावनता, मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, ब्रह्मचारिणी हूं। तेजस्वी हूं, ओजस्वी हूं, पूरे शरीर में करंट सा है, अनुभव। इस सभा में उपस्थित सभी आत्माओं की संगठित ऊर्जा मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है। सारे विकार नष्ट हो रहे हैं, सारी कमजोरियां खत्म हो रही है, जीवन के सारे विघ्न समाप्त। मैं विजयी हूं, ऊर्जावान हूं, सफलता मूर्त हूं। एक ऊर्जा का वर्तुल निर्माण हुआ है, एक एनर्जी सर्किट, एक मैग्नेटिक फील्ड पूरे हॉल में ऊर्जा दौड़ रही है। मेरा मन हल्का हो रहा है, अतीत का सारा बोझ अदृश्य हो गया है, भविष्य की चिंताएं और भय विलीन हो गए हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता मेरा श्रृंगार है, पवित्रता मेरा स्वभाव है, पवित्रता मेरी चमक है, पवित्रता मेरा वरदान है, पवित्रता ही खजाना है। मेरा संपूर्ण जीवन पावन हो रहा है, पवित्रता की बाढ़ आई है, एक सुनामी। मेरे हाथों में पवित्रता की करंट का अनुभव मुझे हो रहा है। मेरा मन शुद्ध, मेरे विचार शुद्ध, भावनाएं पवित्र, बुद्धि पवित्र, संस्कार पवित्र, बोल पवित्र, कर्म पवित्र, दृष्टि पवित्र, वृत्ति पवित्र, दृष्टिकोण पवित्र, स्वप्न पवित्र, संबंध पवित्र, मेरे जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में पवित्रता ही पवित्रता, मेरा चलना पवित्रता, मेरा उठना पवित्रता, मेरा कर्म पवित्रता, मैं पवित्रता का गौरी शंकर हूं। मैं पवित्र ऊर्जा का अजस्त्र स्रोत हूं। दूर दूर विश्व की आत्माओं को मेरी पवित्रता आधार के रूप में अनुभव हो रही है। सुख और शांति का अनुभव हो।